क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। डाउनलोड कीजिए ये फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सिमरन केसरी स्वागत करती हूँ आपका कहानी दिल से दिल तक में। और आज की कहानी है शाह की कंजरी और जिसकी लेखिका है अमृता प्रीतम। उसे अब नीलम कोई नहीं कहता, सब शाह की कंजरी कहते थे। नीलम को लाहौर हीरा मंडी के एक चौबारे में जवानी चढ़ी थी और वहां ही एक रियासती सरदार के हाथों पूरे 5,000 में उसकी नथ उतरी थी और वहां ही उसके हुस्न ने आग जलाकर सारा शहर झुलस दिया था। पर फिर एक दिन वो हीरा मंडी का सस्ता चौबारा छोड़कर शहर के सबसे बड़े होटल फ्लैटी में आ गई थी। वही शहर था पर सारा शहर जैसे रातों रात उसका नाम भूल गया हो। सबके मुंह से सुनाई देता था शाह की कंजरी। गजब का गाती थी, कोई गाने वाली उसकी तरह गिरजे की सद नहीं लगा सकती थी। इसीलिए लोग चाहे उसका नाम भूल गए थे पर उसकी आवाज नहीं भूल सके। शहर में जिसके घर भी तवे वाला बाजा था वो उसके भरे हुए तवे जरूर खरीदता था। पर सब घरों में तवे की फरमाइश के वक्त हर कोई यही कहता था, आज शाह की कंजरी वाला तवा जरूर सुनना है। लुकी छिपी बात नहीं थी, शाह के घर वालों को भी पता था। सिर्फ पता ही नहीं था, उनके लिए बात भी पुरानी हो गई थी। शाह का एक बड़ा लड़का जो अब ब्याहनी लायक था, जब गोद में था तो सेठानी ने जहर खाकर मरने की धमकी दी थी। पर शाह ने उसके गले में मोतियों का हार डालकर उसे कहा था, अरे शाहिनिये, वो तेरे घर की बरकत है। मेरे आंख जोहरी की आंख है, तूने सुना नहीं, नीलम ऐसी चीज होती है जो लाखों को खाक कर देता है और खाक को लाख बनाता है। जिसे उल्टा पड़ जाए उसके लाख से खाक बना देता है, पर जिसे सीधा पड़ जाए उसे खाक से लाख बना देता है। वो भी नीलम है, हमारी राशि से मिल गया है। जिस दिन से साथ बना है मैं मिट्टी में हाथ डालूं तो वो सोना हो जाती है, पर वही एक दिन घर उजाड़ लेगी, लाखों को खाक कर देगी। शाहनी ने छाती की साल सहकर उसी तरफ से दलील दी जिस तरफ से शाह ने बात चलाई थी। अरे मैं तो बल्कि डरता हूं कि इन कंजरियों का क्या भरोसा, कल किसी और ने सब्ज बाग दिखाए और जो ये हाथों से निकल गई तो लाख से खाक बन जाना है। शाह ने फिर अपनी दलील दी थी और शाहनी के पास और दलील नहीं रह गई थी, सिर्फ वक्त के पास रह गई थी। और वक्त चुप था, कई बरसों से चुप था। शाह सचमुच जितने रुपए नीलम पर बहाता उससे कई गुना ज्यादा पता नहीं कहां कहां से बहकर उसके घर आ जाते थे। पहले उसकी छोटी सी दुकान शहर के छोटे से बाजार में होती थी, पर अब से बड़े बाजार में लोहे के जंगले वाली सबसे बड़ी दुकान उसकी थी। घर की जगह पूरा मोहल्ला ही उसका था जिसमें बड़े खाते पीते किराएदार थे और जिसमें तहखाने वाले घर को शाहनी एक दिन के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। बहुत बरस हुए, शाहनी ने एक दिन मोहरे वाले ट्रंक को ताला लगाते हुए शाह से कहा था, उसे चाहे होटल में रखो और चाहे उसे ताजमहल बनवा दो, पर बाहर की बला बाहर ही रखो, उसे मेरे घर न लाना, मैं उसके माथे नहीं लगूंगी। और सचमुच शाहनी ने अभी तक उसका मुंह नहीं देखा था। जब उसने ये बात कही थी उसका बड़ा लड़का स्कूल में पढ़ता था और अब वो ब्याहने लायक हो गया था, पर शाहनी ने ना उसके गाने वाले तवे घर में आने दिए और ना ही घर में किसी को उसका नाम लेने दिया था। वैसे उसके बेटों ने दुकान दुकान पर उसके गाने सुन रखे थे और जने जने से सुन रखा था शाह की कंजरी। बड़े लड़के का ब्याह था, घर पर 4 महीने से दर्जी बैठे हुए थे। कोई सूटों पर सलमा काट रहा था, कोई तिल्ला, कोई किनारी, कोई दुपट्टे पर सितारे जड़ रहा था। शाहिनी के हाथ भरे हुए थे, रुपयों की थैली निकालती खोलती फिर और थैली भरने के लिए तहखाने में चली जाती। शाह के यार दोस्तों ने तो शाह की दोस्ती का वास्ता डाला कि लड़के के ब्याह पर कंजरी जरूर गवानी है। वैसे बात उन्होंने बड़े तरीके से कही थी ताकि शाह कभी बल ना खा जाए। वैसे तो शाह जी की बहुतेरी गाय नाचने वाली है, जिसे मर्जी हो बुलाओ, पर यहाँ मालिकाए तरन्नुम जरूर आए, चाहे मिर्जे की एक ही सद लगा जाए। फ्लैटी होटल आम होटलों जैसा नहीं था, वहाँ ज्यादातर अंग्रेज लोग ही आते और ठहरते थे। उसमें अकेले अकेले कमरे भी थे, पर बड़े बड़े तीन कमरों के सेट भी। ऐसे ही एक सेट में नीलम रहती थी, और शाह ने सोचा दोस्तों यारों का दिल खुश करने के लिए वो एक दिन नीलम के यहाँ एक रात की महफिल रख लेगा। ये तो चौबारे बजाने वाली बात हुई। एक ने उज्र किया तो सारे बोल पड़े, अरे नहीं शाह जी, वो तो सिर्फ तुम्हारा ही हक बनता है। पहले कभी इतने बरस हमने कुछ कहा है? अरे उस जगह का नाम भी नहीं लिया, वो जगह तुम्हारी अमानत है। हमें तो भतीजे की ब्याह की खुशी मनानी है, उसे खानदानी घरानों की तरह अपने घर पर बुलाओ, हमारी भाभी के घर। बात शाह के मन में भा गई, इसीलिए वह दोस्तों यारों को नीलम की राह दिखाना नहीं चाहता था। दूसरे इसलिए कि वो चाहता था नीलम एक बार उसके घर आकर उसके घर की तड़क भड़क देख जाए। पर वो शाहनी से डरता था, दोस्तों को हामी ना भर सका। दोस्तों यारों में से दो ने राह निकाली और शाहनी के पास जाकर कहने लगे, अरे भाभी तुम लड़के की शादी के गीत नहीं गवाओगी? अरे हम तो सारी खुशियां मनाएंगे। शाह ने सलाह की है कि एक रात यारों की महफिल नीलम की तरफ हो जाए। बात तो ठीक है, पर हजारों उजड़ जाएंगे। आखिर घर तो तुम्हारा है, पहले उस कंजरी को थोड़ा खिलाया है, तुम सयानी बनो, उसे गाने बजाने के लिए एक दिन यहाँ बुला लो, लड़के के ब्याह की खुशी भी हो जाएगी और रुपया उजड़ने से बच जाएगा। शाहनी पहले तो भरी भराई बोली, मैं उस कंजरी की माथे नहीं लगना चाहती। अरे यहाँ तो भाभी तुम्हारा राज है, वो बांदी बनकर आएगी और तुम्हारे हुक्म में बंधी हुई तुम्हारे बेटे की खुशी मनाने के लिए। हेठी तो उसकी है, तुम्हारी काहे की? जैसे कमीन कुमने आए डोम मिरासी तैसे वह। बात शाहनी के मन को भा गई। वैसे भी कभी सोते उठते उसे ख्याल आता था कि एक बार देखो तो सही कैसी है। उसने उसे कभी देखा नहीं था, पर कल्पना जरूर की थी, चाहे डर कर, सहम कर, चाहे नफरत से। और शहर में गुजरते हुए अगर किसी कंजरी को टांगे में बैठी देखती तो ना सोचते हुए सोच जाती कि क्या पता ये वही हो। चलो एक बार मैं भी देख लूं, वो मन में घुल सी गई। जो उसको मेरा बिगाड़ना था वो तो बिगाड़ ही लिया, अब उसे और क्या कर लेना है, एक बार चंद्रा को देख तो लूं। शाहनी ने हामी भर दी, पर एक शर्त रखी, यहाँ ना शराब उड़ेगी ना कबाब। भले घरों में जिस तरह गीत गाए जाते हैं उसी तरह गीत करवाऊंगी, तुम मर्द मानस भी बैठ जाना, वो आए और सीधी तरह गाकर चली जाए, मैं वही चार बतासे उसकी टोली में डाल दूंगी और जो लड़के लड़कियों को दूंगी जो बनने सहरे गाएंगी। अरे यही तो भाभी हम भी कहते हैं, शाह के दोस्तों ने फूंक दी, तुम्हारी समझदारी से ही तो घर बना है, नहीं तो क्या खबर क्या हो गुजरना था। वो आई, शाहनी ने खुद अपनी बग्घी भेजी थी, घर मेहमानों से भरा हुआ था। बड़े कमरे में सफेद चादरें बिछाकर बीच में ढोलक रखी हुई थी, घर की औरतों ने बनने सहरे गाने शुरू कर रखे थे। बग्घी दरवाजे पर आ रुकी तो कुछ उतावली औरतें दौड़कर खिड़की की एक तरफ चली गई और कुछ सीढ़ियों की तरफ। अरे बदसुकनी क्यों करती हो, सहरा बीच में ही छोड़ दिया, शाहनी ने डांट सी दी, पर उसकी आवाज खुद ही धीमी सी लगी, जैसे उसके दिल पर एक धमक सी हुई हो। वो सीढ़ियां चढ़कर दरवाजे तक आ गई थी। शाहनी ने अपनी गुलाबी साड़ी का पल्ला सवारा, जैसे सामने देखने के लिए वो साड़ी के शगुन वाले रंग का सहारा ले रही हो। सामने उसने हरे रंग का बाकी वाला गरारा पहने हुआ था, गले में लाल रंग की कमीज थी और सिर से पैर तक ढलकी हुई हरे रेशम की चुनरी एक झिलमिल सी हुई। शाहनी को सिर्फ एक पल यही लगा, जैसे हरा रंग सारे दरवाजे में फैल गया था। फिर हरे कांच की चूड़ियों की छनछन हुई तो शाहनी ने देखा एक गोरा गोरा हाथ एक झुके हुए माथे को छूकर आदाब बजा रहा है, और साथ ही एक झनकती हुई सी आवाज, बहुत बहुत मुबारक हो शाहिनी, बहुत बहुत मुबारक। वो बड़ी नाजुक सी पतली सी थी, हाथ लगते ही दोहरी होती थी। शाहिनी ने उसे गांव तकिए के सहारे हाथ के इशारे में बैठने को कहा तो शाहिनी को लगा कि उसकी मांसल बाह बड़ी ही बेडोल लग रही थी। कमरे के कोने में शाह भी था, दोस्त भी थे, कुछ रिश्तेदार मर्द भी थे। उस नाजनीन के उस कोने की तरफ देखकर भी एक बार सलाम किया और फिर परे गांव तकिए के सहारे ठुमक कर बैठ गई। बैठते वक्त कांच की चूड़ियां फिर छनकी थी। शाहिनी ने एक बार फिर उसकी बाहों को देखा हरे कांच की चूड़ियों को और फिर सौभावी की अपनी बाह में पड़े हुए सोने के चूड़े को देखने लगी। कमरे में एक चकाचौंध सी छा गई थी। हरेक की आंखें जैसे एक ही तरफ उलट गई थी। शाहिनी की अपनी आंखें थी, पर उसे अपनी आंखों को छोड़कर सबकी आंखों पर एक गुस्सा सा आ गया। वो फिर एक बार कहना चाहती थी, अरे बदशुक्मी क्यों करती हो, सहरे गाओ ना, पर उसकी आवाज गले में घुटती सी गई। शायद औरों की आवाज भी गले में घुट गई थी। कमरे में एक खामोशी छा गई थी। वो अध बीच रखी हुई ढोलक की तरफ देखने लगी और उसका जी किया कि वही बड़ी जोर से ढोलक बजाए। खामोशी उसने ही तोड़ी जिसके लिए खामोशी छाई थी। कहने लगी, मैं तो सबसे पहले घोड़ी गाऊंगी, लड़के का शगन करूंगी। क्यों शाहनी? और शाहनी की तरफ ताकती हंसती हुई घोड़ी गाने लगी। निक्की निक्की बूंदी निकिया मीवे वरे, तेरी माँ व सुहागन तेरे सगन करे। शाहनी को अचानक तसल्ली सी हुई, शायद इसीलिए कि गीत के बीच की माँ वही थी और उसका मर्द भी सिर्फ उसका मर्द था, तभी तो माँ सुहागन थी। शाहनी हंसते से मुंह से उसके बिल्कुल सामने बैठ गई, जो उस वक्त उसके बेटे के शगन कर रही थी। घोड़ी खत्म हुई तो कमरे की बोलचाल फिर से लौट आई, फिर कुछ स्वाभाविक सा हो गया। औरतों की तरफ से फरमाइश की गई ढोलकी रोड़े वाला गीत, मर्दों की तरफ से फरमाइश की गई मिर्जे दिया सद्दा। गाने वाली ने मर्दों की फरमाइश सुनी अनसुनी कर दी और ढोलकी को अपनी तरफ खींच कर उसने ढोलकी से अपना घुटना जोड़ लिया। शाहनी कुछ रौ में आ गई, शायद इसीलिए कि गाने वाली मर्दों की फरमाइश पूरी करने के बजाय औरतों की फरमाइश पूरी करने लगी थी। मेहमान औरतों में से शायद कुछ एक को पता नहीं था, वो एक दूसरे से कुछ पूछ रही थी और कई उनके कान के पास कह रही थी, अरे यही है शाह की कंजरी। कहने वालियों ने शायद बहुत धीरे से कहा था, खुसुर खुसुर सा, पर शाहिनी के कान में आवाज पड़ रही थी, कानों से टकरा रही थी, शाह की कंजरी शाह की कंजरी, और शाहिनी के मुंह का रंग फीका पड़ गया। इतने में ढोलक की आवाज ऊंची हो गई और साथ ही गाने वाली की आवाज, सूही में चीरे वालिया मैं कहनी हाँ, और शाहिनी का कलेजा थम सा गया। ये सूहे चीरे वाला मेरा ही बेटा है, सुख से आज घोड़ी पर चढ़ने वाला मेरा बेटा। फरमाइश का अंत नहीं था, एक गीत खत्म होता दूसरा गीत शुरू हो जाता। गाने वाली कभी औरतों की तरफ की फरमाइश पूरी करती, कभी मर्दों की, बीच बीच में कह देती, अरे भाई कोई और भी गाना गाओ ना, मुझे सांस दिला दो। पर किसकी हिम्मत थी उसके सामने गाने की, उसकी टल्ली सी आवाज, वो भी शायद कहने को कह रही थी, वैसे एक के पीछे झट दूसरा गीत छेड़ देती थी। गीतों की बात और थी, पर जब उसने मिर्जे की हेक लगाई, उठनी साहिबा सुतिए उठके दे दीदार, हवा का कलेजा हिल गया, कमरे में बैठे मर्द बुत बन गए थे। शाहिनी को फिर घबराहट सी हुई, उसने बड़े गौर से शाह के मुंह की तरफ देखा। शाह भी और बुतों सरीखा बुत बना हुआ था, पर शाहिनी को लगा वो पत्थर का हो गया था। शाहिनी के कलेजे में हौल सा हुआ और उसे लगा अगर ये घड़ी छिन गई तो आप भी हमेशा के लिए बुत बन जाएगी। वो करे कुछ भी करे पर मिट्टी का बुत ना बने। काफी शाम हो गई, महफिल खत्म होने वाली थी। शाहिनी का कहना था कि आज वो उसी तरह बताशे बांटेगी जिस तरह लोग उस दिन बांटते हैं जिस दिन गीत बैठाए जाते हैं। पर जब गाना खत्म हुआ तो कमरे में चाय और कई तरह की मिठाई आ गई और शाहिनी ने मुट्ठी में लपेटा हुआ 100 का नोट निकालकर अपने बेटे के सिर से वारा और फिर उसे पकड़ा दिया, जिसे लोग शाह की कंजरी कहते थे। अरे रहने दे शाहिनी, आगे भी तो तेरा ही खाती हूँ, उसने जवाब दिया और हंस पड़ी। उसकी हंसी उसके रूप की तरह झिलमिल कर रही थी। शाहिनी के मुंह का रंग हल्का पड़ गया, उसे लगा जैसे शाह की कंजरी ने आज भरी सभा में शाह से अपना संबंध जोड़कर उसकी हतक कर दी थी। पर शाहिनी ने अपना आप थाम लिया, एक जरासा किया कि आज उसने हार नहीं खानी थी और वो जोर से हंस पड़ी, नोट पकड़ाते हुए कहने लगी शाह से तो तूने नित लेना है, पर मेरे हाथ से तूने फिर कब लेना है, चल आज ले ले। और शाह की कंजरी 100 के नोट को पकड़ती हुई एक ही बार में हीनी सी हो गई। कमरे में शाहिनी की साड़ी का सगुन वाला गुलाबी रंग फैल गया। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करिएगा। नमस्कार।